का था, रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पाषाणी का चौथा एवं अंतिम भाग। मृगमयी के हृदय में आषाढ़ माह के सजल मेघों के समान अश्रुओं से पूर्ण गर्व उमड़ने लगा। उस गर्व से उसकी बड़ी बड़ी आंखों की छायादार घनी पलकों पर और भी गहरा आवरण डाल दिया। वह मन ही मन अपूर्व से कहने लगी, मैं अब तक अपने को ना समझ सकी तो ना सही, पर तुमने मुझे क्यों नहीं समझने का प्रयत्न किया? तुमने मुझे दंड क्यों नहीं दिया? तुमने अपनी इच्छा के वशीभूत ही क्यों नहीं चलाया? मुझ डाइन ने जब तुम्हारे साथ महानगरी चलने को इनकार किया तो तुम मुझे जबरदस्ती पकड़कर क्यों नहीं ले गए? तुमने मेरा कहना क्यों पूरा किया? मेरे हट के आगे क्यों झुके? मेरी अवज्ञा को क्यों सहन किया? इसके उपरांत फिर उसे उस दिन की याद आई। पहले पहल जिस दिन अपूर्व सवेरे तालाब के किनारे सुनसान रास्ते में उसे बंदी बनाकर मुंह से कुछ न कहकर केवल उसके मुख की ओर निहारता रहा था, उस दिन के उस तालाब की, उस पथ की, वृक्ष के नीचे उस छाया की, भोर की उस सुनहली धूप की, हृदय भार से झुकी हुई उस गहरी चितवन की, उसे स्मृति छा गई और सहसा उसका पूरा पूरा अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था। इसके उपरांत विदा की बेला पर जिस चुंबन को वह अपूर्व के होठों तक ले जाकर लौटा आई थी, वह अधूरा चुंबन अब मरु मरीचिका की ओर त्रिशत मृग की तरह उत्तरोत्तर तीव्रता के साथ उन बीते हुए दिनों की ओर उड़ान भरने लगा। किंतु तृष्णा उसकी किसी प्रकार भी न मिट सकी। अब रह रहकर उसके मन में यही बातें उठा करती, यदि उस समय तू ऐसा करती, उनकी बात का यदि ऐसा उत्तर देती, तब ऐसा करती। अपूर्व के मस्तिष्क में इस बात का बड़ा दुख रहा कि मृगमयी ने उसे अच्छी तरह पहचाना नहीं, और मृगमयी ने भी आज बैठे बैठे यही सोचा कि उन्होंने उसे क्या समझा होगा, क्या सोचते होंगे। अपूर्व ने उसे पाषाणी, चंचल, उद्दंड, नादान लड़की समझ लिया होगा। लबालब भरे हुए तरलामृत की धारा से अपनी प्रेम तृष्णा मिटाने में उसे समर्थ नवयोवना नहीं जाना। इस वेदना से धिक्कार के मारे लज्जा से वह धारा में धसी जा रही थी, और प्रियतम के चुंबन और सुहाग के उस ऋण को वह अपूर्व के तकिए को दे देकर उरिन होने का प्रयत्न करने लगी। इसी प्रकार काफी दिन बीत गए। चलते समय अपूर्व कह गया था, जब तक तुम्हारा पत्र नहीं आएगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। मृगमयी इसी बात को याद कर कमरे का द्वार बंद कर एक दिन पत्र लिखने के लिए बैठी। अपूर्व ने जो सुनहरी किरणों के कागज दिए थे उन्हें निकाल कर बैठी बैठी विचारने लगी, क्या लिखे। बड़े यत्न के बाद हाथ जमा कर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अंकित कर उंगलियों में स्याही पोत कर छोटे बड़े अक्षरों में ऊपर संबोधन बिना किए ही एकदम लिख दिया, तुम मुझे चिट्ठी क्यों नहीं भेजते, तुम कौन हो, घर चले आओ और क्या होना चाहिए। वह सोचकर भी किसी निर्णय पर ना पहुंच सकी। अंत में उसने कुछ विचार कर लिया। अब मुझे चिट्ठी लिखना और कैसे रहते हो सो लिखना, जल्दी आना, सब अच्छी तरह है और कल हमारी काली गाय के बछड़ा हुआ है। इतना लिखकर चिट्ठी लिफाफे में बंद कर दी और फिर हृदय के प्यार से सिंचित शब्दों में लिख दिया, श्रीयुत अपूर्व कुमार राय। प्यार चाहे कितना ही उड़ेला गया हो किंतु तो भी रेखा सीधी, अक्षर सुंदर और लिखावट सही नहीं हुई। लिफाफे पर नाम के सिवा और कुछ लिखना भी आवश्यक है, मृगमयी इस बात से परिचित ना थी। कहीं सास माँ या कोई और ना देख ले, इस भय से लिफाफे को विश्वस्त दासी के हाथ डाक में डलवा दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस पत्र का कुछ फल नहीं निकला और अपूर्व घर नहीं लौटा। माँ ने देखा कि कॉलेज बंद हो गया फिर भी अपूर्व घर नहीं आया। सोचा अब भी वह उनसे गुस्सा है। मृगमयी ने भी समझ लिया कि अपूर्व उससे गुस्सा कर रहा है और तब वह अपने पत्र की याद करके मारे लज्जा के गड़ जाने लगी। वह पत्र उसका कितना तुच्छ और छोटा था, उसमें तो कोई बात ही नहीं लिखी गई। उसने अपने मन के भाव तो उसमें लिखे ही नहीं, फिर उनका ही क्या दोष। यह सोच सोचकर वह तीर बिंधे शिकार की तरह भीतर ही भीतर तड़पने लगी। दासी से उसने बार बार पूछा, उस पत्र को तो डाक में डाल आई थी। दासी ने उसे कितनी ही बार समझाया, हां बहुजी, मैं खुद चिट्ठी को डब्बे में डाल आई हूं, बाबूजी को वह मिल भी गई होगी। अंत में अपूर्व की मां ने मृगमयी को पास बुलाकर पूछा, बहू, वह बहुत दिनों से घर नहीं आया, मन चाहता है कि कलकत्ता जाकर उसे देख आऊं, क्या तुम साथ चलोगी। मृगमयी जबान से कुछ न कह सकी, परंतु स्वीकृति रूप में सिर हिला दिया और अपने कमरे में जाकर तकिए को छाती से लगाकर इधर उधर करवटें बदलकर हृदय के आवेश को दबाकर हल्की होने का प्रयत्न करने लगी और इसके बाद भावी आशंका के विषय में सोचकर रोने लगी। अपूर्व को सूचित किए बिना ही दोनों उसकी शुभकामना चाहती हुई कलकत्ता को चल दी। अपूर्व की मां कलकत्ते में अपने दामाद के यहां ठहरी। उसी दिन संध्या को अपूर्व मृगमयी के पत्र की आस छोड़कर और वचन को भंग करके स्वयं ही पत्र लिखने के लिए बैठा था, तभी उसे जीजा जी का पत्र मिला कि तुम्हारी मां आई हैं, जल्दी आकर मिलो और रात को भोजन यहीं करना। समाचार सब ठीक है। इतना पढ़ने पर भी उसका मन किसी अमंगल सूचना की आशंका कर घबरा उठा। वह तुरंत ही कपड़े बदल जीजा जी के घर की ओर चल दिया। मिलते ही उसने मां से पूछा, मां सब मंगल तो है? मां ने कहा, सब देवी की कृपा है। छुट्टियों में तो घर क्यों नहीं आया? इसलिए मैं तुझे लेने आई हूं। अपूर्व ने कहा, मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी मां? मैं तो कानून की परीक्षा के कारण। बयालू करते समय दीदी ने पूछा, भैया उस समय भाभी को तुम साथ ही क्यों नहीं लेते आए? भैया ने गंभीरता के साथ कहा, कानून की पढ़ाई थी दीदी। जीजा ने हंसकर कहा, यह सब तो बहाना है, असल में हमारे डर से लाने की हिम्मत नहीं पड़ी। दीदी बोली, बड़े डरपोक निकले भैया, कहीं इस डर से बुखार तो नहीं चढ़ा? इस तरह हंसी मजाक चलने लगा, परंतु अपूर्व वैसे ही उदासीन बना रहा। मां जब कलकत्ते आई तब मृगमयी भी चाहती तो वह भी कलकत्ते आ सकती थी, पाशानी कहीं की। इस प्रकार सोचते सोचते उसे सारा मानव जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा। बयालू के बाद बड़ी जोर की आंधी आई और बहुत तेज वर्षा होने लगी। दीदी ने कहा, भैया आज यहीं रह जाओ। अपूर्व ने कहा, नहीं दीदी, मुझे जाना ही होगा, बहुत सा काम पड़ा है। जीजा ने कहा, ऐसी रात में तुम्हें क्या काम है? एक रात को ठहर ही जाओगे तो कौन सा काम बिगड़ जाएगा? बहुत कहने सुनने के उपरांत अनिच्छा से अपूर्व को उस रात दीदी के पास ठहरना पड़ा। राजी हो जाने पर दीदी ने कहा, भैया तुम थके हुए दिखाई देते हो, अब चलकर आराम कर लो। अपूर्व की यही इच्छा थी कि शैया पर अंधेरे में जाकर सो रहे तो उसकी जान बचे। बातें करना भी तो उसे बुरा लगता था। सोने के लिए जिस कमरे के द्वार तक उसे पहुंचाया गया, वहां जाकर देखा कि भीतर अंधकार छाया था। दीदी ने कहा, डरो मत भैया, हवा से बत्ती बुझ गई मालूम होती है, दूसरी बत्ती लिए आती हूं। अपूर्व ने कहा, नहीं दीदी, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे अंधेरे में ही सोने की आदत है। दीदी के चले जाने पर अपूर्व अंधकार से भरे कमरे में सावधानी के साथ शैया की ओर बढ़ा। शैया पर बैठना चाहता था कि इतने में चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई दी और कोमल बाहुपाश में वह बुरी तरह जकड़ गया। उन्हीं क्षणों पुष्प से कोमल व्याकुल ओष्ठों ने डाकू के समान आकर अविरल अश्रुधारा के भीगे हुए चुंबनों के मारे उसे आश्चर्य प्रकट करने तक का अवसर न दिया। अपूर्व पहले तो चौंक पड़ा, इसके बाद उसकी समझ में आ गया कि जो काम वह पाशानी को मनाने के लिए अधूरा छोड़ाया था, उसे आज अश्रुओं के वेग ने पूर्ण कर दिया है। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पाशानी का चौथा एवं अंतिम भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।